प्रेरक उद्बोधन। बोर्ड परीक्षा परिणाम से उत्पन्न तनाव को दूर करने के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन की पहल। जिले के आला अधिकारी और मोटिवेटर्स 10वीं और 12वीं के बच्चों और पालकों को फेसबुक लाइव द्वारा प्रेरित कर रहे हैं। अरपा सामुदायिक रेडियो ऐप और वेबसाइट पर इन प्रेरक संवादों का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे, दोपहर 3 बजे से इन दोनों ही प्रेरक उद्बोधनों का पुनः प्रसारण होगा। आज प्रेरक उद्बोधन की दूसरी कड़ी में सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के वाइस चांसलर डॉक्टर एडीएन वाजपेयी का उद्बोधन।
मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लाइव शो में और धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं जिला प्रशासन को और यहां के शिक्षा विभाग को, जिन्होंने आपके परीक्षा फल आने से पहले ही इस रहने के लिए और किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी होगी। कल यहां के एसपी साहब भी बोलेंगे और बहुत सारे लोगों को बोलने का पूरे सप्ताह भर का कार्यक्रम बनाया गया है। शायद मुझे जानते होंगे आप लोग, यहाँ एक अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय है, उसका मैं वाइस चांसलर हूँ। मतलब शिक्षा जगत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, अभी आप 10वां 12वां करोगे, फिर बीए पास करोगे, बीए में आओगे, तब हायर एजुकेशन लेवल पे आओगे, उस हायर एजुकेशन के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हमारा विश्वविद्यालय जो है वो कम से कम 1.5 लाख विद्यार्थी पढ़ते हैं और सबके लिए मैं मोटिवेशनल बात किया करता हूँ। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कि असफल ना हुआ हो। जो सफलता के सबसे बड़ी ऊंचाई पर बैठा हुआ है वो कई कई बार असफल हुआ है। तो पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी प्रकार की असफलता से डरने की कोई बात नहीं है, नंबर एक नहीं है। ज़िंदगी जो है वो बहुत बड़ी होती है, ज़िंदगी में बड़ी चुनौतियाँ आती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोग जानता हूँ जो परीक्षा में तो फर्स्ट डिवीज़न आए, टॉप किया और ज़िंदगी की परीक्षा में पीछे चले गए, नीचे चले गए। तो जो ज़िंदगी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सफल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है अपेक्षाकृत ये स्कूल की परीक्षाओं में सफल होना। अब सफलता की भी समझिए श्रेणियां हैं। आजकल क्या है, हमारे ज़माने में तो पास होना ही बहुत महत्वपूर्ण होता था, आजकल तो पास होना है और पास होने में भी 99% 95% 70% को भी अच्छा नहीं मानते हैं। घर वाले कहते हैं 70% लेके क्या पास हुए आप, 60% तो फर्स्ट डिवीज़न आती, फर्स्ट डिवीज़न का भी कोई स्कोर नहीं होता है। तो ये जो अच्छे अच्छे अंकों में 99% पास होना, अच्छे नंबर्स पास होना चाहिए। अरे भाई, जिसके पास में जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार ही तो पढ़ाई करेगा। बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा है तो कैसे समझ ही करवाएं, ये देखना पड़ेगा पेरेंट्स को कि उसके परिश्रम में तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं रह गई। हमें केवल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ाई लिखाई और परीक्षा में पास होना एक अंग है, संपूर्णता नहीं है। तो संपूर्णता की दृष्टि से भी हमको जो ध्यान देना पड़ेगा। तो जो पेरेंट्स हमारे हैं, पेरेंट्स से भी मैं कहूँगा, पहले तो तुम जितने हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए यहाँ पर, वो सब हमारे विद्यार्थी हैं, उनसे मैं कहूँगा किसी प्रकार का तनाव मन में नहीं लेना। आप पास होंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, ऐसी मेरी शुभकामना है, आशीर्वाद है। लेकिन मान लीजिए आप नहीं पास हो पाए, तब आप क्या करोगे? कई मतलब किससे आते रहते सामने कि कोई गलत रास्ता अपना लेता है, कोई कहता है हम घर छोड़ के चले जाएंगे, कोई हम आत्महत्या कर लेंगे, कोई कुछ। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ये जो कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूशन बहुत सारी चल रही हैं, वहाँ पर बच्चों को एक कम समझिए कि नंबर मिले हैं वो आगे जाकर के ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक बात और करना चाहूँगा कि कुछ पेरेंट्स जो है वो बच्चों को अनावश्यक रूप से उनके मन में भर देते हैं, तुमको तो बनना है तो दूसरा रास्ता है, यदि आपको विदेश यात्रा में निकलना है तो दूसरा रास्ता है, यदि आपको जर्नलिज्म में जाकर पत्रकार बनना है दूसरा रास्ता है, 12वां पास कर लिया है तो आपको बीए में प्रवेश लेना, बीएससी लेना है, बीकॉम लेना है, कहाँ पर लें इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये परीक्षा के बाद ही नहीं है, अच्छे कॉलेजेस हमारे पास में, हमसे अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बिलासपुर में हैं, मुंगेली में हैं, कोरबा में हैं, पेंड्रा में हैं, चार जिले जो हमसे अफिलिएटेड हैं वहाँ पर होंगे। हमने अपना एक हेल्प डेस्क खोल रखी, अपनी कोशिश करते रहे, नहीं कोशिश हुई और फर्स्ट अटैम्प्ट में आईएएस बन गए। एक रोल मॉडल हमारे पास में विद्यमान होता रहता है। अब थोड़ी सी बात ये भी सोचिए कि हम ऐसे समय में रह रहे हैं जिसमें कितने लोग समझिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं। आप आसपास के गांव के लोगों को देख लीजिए, पढ़े लिखे लोग नहीं, उनसे तो आपका स्थान कितना बढ़िया है। ये भाव जो है हमारे अंदर आना चाहिए, इस भाव को लेकर के हम आगे जाएंगे। दूसरी बात एक और हम कहना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा व्यतीत होगा और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इसी तरह से मैं तो सबको रिकमेंड ये भी करता हूँ, योगासन है, प्राणायाम है, इसकी भी क्रियाएं शुरू कर दीजिए, इससे भी काफ़ी अच्छे बाइक बनेंगे। पूजा पाठ लोग करते हैं, उसमें रुचि हो वो भी करिए। ये सारी सकारात्मक जो हमारे अंदर आएगी वो हमारे पास में आ जाएगी। हम एक अच्छे नागरिक बनकर, हमारा उद्देश्य ये है हम अच्छे नागरिक बनकर के स्थापित हैं, हमें राष्ट्र की सेवा करनी है। और राष्ट्र से तात्पर्य ये नहीं होता है कि हम भूगोल लेकर के भारत को बैठ जाएं। हमारा उद्देश्य है हम छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जहाँ जहाँ हमें तहाँ तहाँ होकर मातारी की हमारी सेवा करे कहे। हम लोग अपनी माता मातृभूमि की छत्तीसगढ़ मातारी कहते हों, तो छत्तीसगढ़ मातारी की हमको जो सेवा करनी है, जहाँ पर भी खड़े हैं उसे कितना अच्छा बना सकते हैं, कितना उसके फूल पौधे लगा सकते हैं, उसकी सेवा करने से भाव बढ़ जाए, वो खुद ही आपको आशीर्वाद देगी। तो अच्छी बात यह है कि भाई तनाव मुक्त होने के लिए आपको पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं परीक्षा पे चर्चा कराते हैं, हर साल परीक्षा पे चर्चा कराते हैं, बच्चों के प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों के उत्तर दिया करते हैं। आपको एक काम और करना है, अभी रिजल्ट आने से पहले देखिए, हम सभी लोग आधुनिक युग में रह रहे हैं, आप सबको अनुमान है कि आपको लगभग कितने अंक मिलने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो 99% वाला उसको अंदाज़ा होगा, 70% अंदाज़ा होगा, 60% अंदाज़ा होगा, सबको अंदाज़ा होगा कि हमारे अंक जो है इसके आसपास आना चाहिए। आ जाएंगे अंक बहुत अच्छा, मान नहीं आए तो रिवॉल्यूशन की तैयारी करें, देखिए हम रिवॉल्यूशन कैसे हो सकता है उसको देखें। नहीं कर पाए तो हमें अपनी कमियां जो है खुद पता लगाना चाहिए। हम जो है अपनी कमियों के बारे में कोई और हमसे कहे उसको भूल जाइए। हमें जो भी अंक मिले हैं उनको हम स्वीकार करें, ये हमारे द्वारा अर्जित अंक हैं। ज़्यादा करना है उसकी हम तैयारी अभी से शुरू कर दें, जिससे कि भविष्य में जाकर के हम टॉपर्स की लिस्ट में हमारा नाम शामिल हो और जीवन में जो हम आगे बढ़ें। हम चाहेंगे कि कुछ और क्वेरीज हों, कुछ और आपकी शंकाएँ हों तो हमारे पास में आएँ, हम उनका जो उत्तर देने की हम कोशिश करेंगे। कोई प्रश्न अगर आपके होते हैं तो मुझे आप बताइए और बताने के बाद में हम जो है वो करेंगे। ये देखिए सवाल हमारे पास में आया है कि नकारात्मक नकारा विचार न रखें, अच्छी गतिविधियाँ जुड़ें। बिल्कुल सही बात है, पेरेंट्स को भी जो अच्छी बात है। हाँ, आपको प्रेरित कैसे रहना है इसके बारे में चिंता करनी है। स्वतः प्रेरित सबसे अच्छी बात होती है, हम अपने आप से ही प्रेरणा लें, हम क्यों निर्भर हैं किसी और व्यक्ति के द्वारा। लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स हैं उनका योगदान जरूरी होता है। आप यदि बड़े हैं तो छोटों को प्रेरणा दें, बीच के हैं तो बड़े छोटे बीच वाले आपको प्रेरणा दें। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगा, सकारात्मक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और बच्चियों को भी जाकर पढ़ना। मैं बताऊंगा आजकल हर जगह टॉप कर रही बच्चियां हमारी, आजकल आप कहीं भी जाएंगे तो वो समझिए कि उसमें टॉप में आती हैं। तो उनके लिए विशेष ध्यान की ज़रूरत है सब ज़्यादा। तो बच्चे तो थोड़ा सा और खुली प्रकृति को अफिलेटेड हैं और सब कहीं जेंडर की जिसकी पाई होती, जो आपकी च्वाइस हो उस च्वाइस के अंतर्गत आप जाइए। अभी क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हम मल्टीपल चॉइस भी देना चाहते हैं। आप एक कोर सब्जेक्ट ले सकते हैं और समझिए कि माइनर भी ले सकते हैं। इसमें हम साथ ही साथ आपको इंटर्नशिप के बारे में, वोकेशनल स्टडीज के बारे में भी हम देंगे। 6 टाइप के कोर्सेज हम इसमें लाने वाले हैं। बहुत जल्दी शायद 1 जुलाई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाएगी अपने प्रदेश में, तो उससे भी आपको जो काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है, स्कूली शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और शिक्षा सब एक लंबी शिक्षा के भिन्न भिन्न अंग हैं। इनको अलग ढंग से हम नहीं देख सकते। ये जो है वास्तविक परिप्रेक्ष्य है आज का हमको दिखाई पड़ रहा है। और कोई सवाल हो तो बताइए। जब पढ़ाई शुरू होती है, दीक्षारंभ प्रोग्राम करते हैं, सारे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कैसे पढ़ाई करें क्या है। वैसे परीक्षा से पहले भी इसको एक इंटीग्रल पार्ट बना देना चाहिए स्कूली शिक्षा का। हर परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के साथ में वहाँ के प्रधानाचार्य, वहाँ के टीचर्स बैठें, और हम ये भी कहेंगे ये जो सतत प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। ये जो क्लास के टीचर्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक होगा ऐसा है कि जो स्लो लर्नर्स हैं एंड फास्ट लर्नर्स हैं, इन दोनों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जो स्लो लर्नर्स हैं, जो बेचारे धीमे धीमे सीख पाते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, देखिए कि हमारा परिवेश मान लीजिए दूसरा है, पारिवारिक पृष्ठभूमि दूसरी है, आर्थिक पृष्ठभूमि दूसरी है, कोई गाँव से आ रहा है, कोई जंगल गाँव से आ रहा है, तो समझे जैसी अपेक्षा तो नहीं कर सकते। उनको स्पेशली जो हमको बताना पड़ेगा कि आपकी निगा जो गैप हो जाता था उसको रट लेता था, रटने के बाद फिर लिखता था, तो हमारी पूरी तैयारी हो जाती थी। तो होता है क्या है कि परीक्षा के दौरान आप जब बैठो खाली लिखने के लिए, तो आपकी उंगलियां दर्द करने लगेंगी। पहले से तैयारी होगी तो आपको पता चलेगा, उनके बारे में कैसे पता चलेगा। जो हॉस्टल में रह के रह रहे हैं उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंसी, वहाँ के कॉलेज के प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि रात बिरात जाकर वो उनको भी देखें, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। उनको समस्याएं तो नहीं है, समस्याओं बारे में जाने। हम लोग क्या होता, अधिकांश परिणाम के बारे में चिंता करते हैं, समस्याओं के बारे में चिंता नहीं करते। हमें विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में भी जानना होगा, और समस्याओं को बड़ी सहूलियत से, समझदारी से, प्रेम से उन्हें सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। किसी प्रकार का दंडात्मक, अनुशासनात्मक प्रभाव डाल के नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो संक्षेप में मैं प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे यही अपेक्षा करता हूँ। अभी जो को जिलाधीश महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा।
सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।